अब चलिए एक सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। जब कोई प्राचीन लेखक किसी पत्थर पर या किसी पुराने पार्चमेंट पर कुछ लिख रहा होता था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता था?
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है।
वही ना, मतलब आज के दौर में हमारी आदत बन गई है हिस्ट्री को एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की तरह देखने की। हम सोचते हैं कि इतिहास की किताबों में जो दर्ज है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा, एकदम ठोस और ऑब्जेक्टिव।
पर प्राचीन दुनिया में हिस्ट्री लिखने का मकसद हमेशा प्योरली फैक्ट्स रिकॉर्ड करना नहीं होता था। कभी कभी उनका मकसद एक ऐसी कहानी गढ़ना था जो एक पूरे साम्राज्य या किसी धर्म की नींव बन सके।
और इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम रॉबर्ट वैन नॉय के लेक्चर नोट्स के जरिए ओल्ड टेस्टामेंट के इतिहास और फॉर्म क्रिटिसिज्म के समुन्दर में उतरेंगे।
बिल्कुल, ये एक ऐसी चर्चा है जहां सच क्या है और विश्वास क्या है, इसके बीच की बाउंड्री काफी धुंधली हो जाती है। और इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी के एक जर्मन स्कॉलर गेरहार्ड फॉन राद से।
ओह, इन्होंने ही तो बिब्लिकल स्कॉलरशिप की दुनिया हिलाकर रख दी थी, है ना?
हाँ, एकदम। उन्होंने उस समय की इस धारणा को चुनौती दी कि ओल्ड टेस्टामेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। उनका मानना था कि एंशियंट टेक्स्ट्स को मॉडर्न हिस्टोरियन के चश्मे से पढ़ना एक बहुत बड़ी भूल है।
तो उनके हिसाब से ये टेक्स्ट क्या थे अगर ठोस हिस्ट्री नहीं थे तो?
देखिए, उन्होंने कहा कि ये दरअसल कन्फेशंस है, यानी विश्वास के कथन, जिन्हें बस एक ऐतिहासिक रूप में पेश किया गया है।
अच्छा, और इस चीज को समझने के लिए वॉन रैड ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वही फॉर्म क्रिटिसिज्म है।
सही पकड़ा आपने, पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। फॉर्म क्रिटिसिज्म कोई नई टेक्निक नहीं थी, हर्मन गुंकिल जैसे विद्वान पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे थे।
राइट, गुंकिल का अप्रोच तो काफी माइक्रो था, वो कहानियों को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ते थे।
हाँ, ताकि वो समझ सकें कि हर एक किस्सा कहाँ से आया है। लेकिन वॉन रैड ने इस माइक्रो अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक मैक्रो अप्रोच अपनाया और सीधा हेक्सोट्यूज पर फोकस किया।
एक सेकंड, हेक्सोट्यूज का मतलब जेनेसिस से लेके जोशुआ तक की शुरुआती छह किताबें ना?
जी हाँ, बिल्कुल। वॉन रैड की ओरिजिनेलिटी यही थी कि उन्होंने महसूस किया कि अगर हम सिर्फ छोटी कहानियों को आइसोलेट करते रहेंगे तो हम उस पूरे ढांचे को मिस कर देंगे जो इन सबको जोड़े हुए है।
तो उन्होंने इस पूरे हेक्सोट्यूज को एक साथ कैसे देखा?
उन्होंने कहा कि ये पूरा हेक्सोटुक अपने आप में एक यूनिफाइड गैटुंग है। गैटुंग यानी एक विशाल साहित्यिक शैली, और हर साहित्यिक शैली के पीछे एक सित्सिम लेबन होता है।
सित्सिम लेबन, ये कैसा टर्म है?
ये एक जर्मन फ्रेज है जिसका सीधा मतलब होता है सिचुएशन इन लाइफ, यानी वो सामाजिक या धार्मिक स्थिति जिसने उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को पैदा किया।
समझ गया। तो वॉन रैड के हिसाब से हेक्साटॉच किसी एक लेखक ने बैठकर अकेले नहीं लिखी थी?
एकदम नहीं, ये एक विशाल संकलन था जहां सादियों की अलग अलग ट्रेडिशंस को एक साथ लाकर एक यूनिफाइड नैरेटिव में पिरोया गया था।
तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा फ्रेमवर्क था जिसने इन सभी बिखरी हुई कहानियों को जोड़ा? रॉबर्ट वैन नॉय का नोट्स इसके लिए ड्यूटोरोनमी चैप्टर 26 की तरफ इशारा करते हैं।
हाँ, वहाँ एक छोटे से क्रीडो का जिक्र है। प्राचीन इसराइल में जब लोग अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने आते थे तो वो एक रटी रटाई लाइन बोलते थे।
कुछ ऐसा कि मेरा पिता एक भटकता हुआ आरमियन था जो इजिप्ट गया, वही ना?
बिल्कुल वही। और फिर वो पूरा सीक्वेंस बताते थे कि कैसे भगवान ने उन्हें इजिप्ट से निकाला। वॉन रैड का दावा था कि ये छोटा सा क्रीडो ही वो रीढ़ की हड्डी थी जिसके आसपास पूरे हेक्साट्यूज का मास जमा किया गया।
ओके, लेट मी अनपैक दिस। क्या ये वैसा ही है जैसे किसी परिवार की अलग अलग असंबंधित किस्से कहानियों को मिलाकर एक शानदार एपिक ओरिजिन स्टोरी में बदल दिया जाए ताकि किसी फैमिली रियूनियन में गर्व से सुनाया जा सके?
ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। देखिए, एंशियंट इसराइल कोई एक देश थोड़ी था शुरुआत में, वो अलग अलग कबीलों का एक लूज नेटवर्क था और हर कबीले की अपनी लोकल कहानियां थीं।
ओ, यानी किसी के पास बहादुरी का किस्सा तो किसी के पास चमत्कार की कहानी।
वही तो, और इन कबीलों की उन कहानियों का पूरे इसराइल से शायद कोई लेना देना ही नहीं था, पर उस क्रीडो के फ्रेमवर्क में उन सभी लोकल नैरेटिव्स को एक पैन इसराइलाइट हिस्ट्री में फिट कर दिया गया।
अगर इसे थोड़ा सोशियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये एक ब्रिलियंट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी लगती है। एक फ्रेगमेंटेड ग्रुप खुद को एक महान इतिहास वाले देश के रूप में देखने लगता है।
हाँ, ये सोसाइटी की उस साइकोलॉजिकल नीड को दर्शाता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पैदा होता है।
कि मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनमें से कितनी घटनाएं असल में घटी थीं।
एग्जैक्टली और वॉन रैड यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो इतिहास को दो हिस्सों में बांट देते हैं, पहला हिस्टोरी और दूसरा हेल्स की शिष्टे।
रुकिए, थोड़ा इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। हिस्टोरी मतलब ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक हिस्ट्री, राइट, जो सच में घटी।
सही कहा। और हेल्स की शिष्टे का मतलब है सैल्वेशन हिस्ट्री, यानी वो इतिहास जिसे विश्वास ने अपने आसपास बुन लिया है।
तो फॉन रैड का टेक क्या था इन दोनों पर?
उनका कहना था कि ओल्ड टेस्टामेंट में हिस्टोरी लगभग जीरो है, जिसे लोग सच मानते आए हैं, जैसे रेड सी पार करना, वो हिस्टोरिकली कभी हुआ ही नहीं।
Here's where it gets really interesting. पर रुकिए, अगर कुछ सच में घटित ही नहीं हुआ तो क्या वो सिर्फ पौराणिक कथा या फिक्शन नहीं बन जाता? हम इसे हिस्ट्री का नाम ही क्यों दे रहे हैं?
यही चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। फॉन रैड इसे धोखा या फ्रॉड नहीं मानते, वो इसे एंशियंट लोगों के विश्वास का एक सच्चा और पॉजिटिव एक्सप्रेशन मानते हैं, भले ही वो तथ्यों से मेल ना खाए।
लेकिन अगर फेथ की कोई सॉलिड जमीन ही नहीं है तो हाइल्स की शिष्टे को एक लेजिटिमेट कैटेगरी मानना एक तरह का इंटेलेक्चुअल एस्केप मैकेनिज्म लगता है, ताकि साइंस से क्लैश भी ना हो।
और यही वो एग्जैक्ट फिलोसॉफिकल इशू है जहां रॉबर्ट वॉनोय उनसे पूरी तरह डिसएग्री करते हैं। वॉनोय कहते हैं कि फॉन रैड ने सब कुछ उल्टा कर दिया है।
उल्टा कर दिया, यानी विश्वास ने इतिहास नहीं बनाया बल्कि इतिहास ने विश्वास को जन्म दिया।
एकदम सही पकड़ा आपने। वॉनोय का मानना है कि सच में घटी हुई ऐतिहासिक घटनाओं ने फेथ को पैदा किया, और इसको साबित करने के लिए वो एक्सोडस चैप्टर 14 का उदाहरण देते हैं।
वही रेड सी वाला किस्सा जहाँ इसराइलाइट फंसे हुए थे।
वॉनोय इस चैप्टर की वर्स 31 का विश्लेषण करते हैं, जिसमें लिखा है कि जब इसराइल ने भगवान की उस महान शक्ति को देखा, तब लोगों ने भगवान पर विश्वास किया।
वाओ, तो ग्रामर और सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। पहले देखा, फिर विश्वास किया।
एग्जैक्टली। टेक्स्ट खुद ये क्लेम नहीं कर रहा कि विश्वास पहले आया। पहले एक फिजिकल घटना घटी, लोगों ने उसे देखा और तब उनका फेथ जागृत हुआ।
तो अगर वॉन रॉयड सही थे कि बिना किसी फिजिकल इवेंट के सिर्फ फेथ के आधार पर नैरेटिव लिखा गया, तो टेक्स्ट का अपना दावा ही झूठा साबित हो जाता है।
बिल्कुल। और वॉना की इस बात को सपोर्ट करने के लिए लेक्चर नोट्स में फ्रांस हेस का एक बहुत शानदार कोट है। वो कहते हैं कि हमारा विश्वास उस पर आधारित होना चाहिए जो सच में हुआ है,
ना कि सिर्फ उस पर जिसके होने का सिर्फ दावा किया गया है, राइट?
हाँ, हेस का मानना था कि अगर आप हिस्टोरिये और हेल्स किश्ते को अलग कर देंगे तो बिब्लिकल फेथ के लिए ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यानी अगर नींव ही किसी सच्चाई पर नहीं टिकी है तो क्या उस पर बनी विश्वास की पूरी बिल्डिंग एक दिन ढेर नहीं हो जाएगी?
वही तो वॉना की सबसे बड़ी चिंता है। एक यूनिफाइड ट्रूथ के बिना धर्म सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टेट बनकर रह जाता है, जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता।
ये काफी गहरा पॉइंट है, लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आज के दौर में एक तीसरा ग्रुप भी तो है स्कॉलर्स का।
बिल्कुल।
जिसे कंसेशनरी इवेंजलिज्म कहा जाता है।
हाँ, जब वॉन रैड और वेनेनॉय जैसे लोगों में इतना बड़ा डिवाइड हो तो कुछ लोग बीच का रास्ता निकालते ही है।
क्विटवर्थ और कैसे ही स्कॉलर है,
और उनका बीच का रास्ता क्या कहता है?
उनका अप्रोच थोड़ा प्रैग्मेटिक है। वो कहते हैं कि बाइबल का मुख्य संदेश रिडेम्पशन है, और उस कोर मैसेज को बचाने के लिए अगर थोड़ी हिस्टोरिकल डिटेल सैक्रिफाइस करनी पड़े तो खुशी खुशी कर देनी चाहिए।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मूवी में कॉन्टिन्यूटी एरर्स ढूंढना। क्विटवर्थ कह रहे हैं कि प्लॉट होल्स को इग्नोर करो और बस फिल्म का मुख्य संदेश लो। सही कहा। क्लिथर तो ओपनली मानते हैं कि टेक्स्ट में विरोधाभास है, जैसे किंग उज़ाया का बरियल। टू किंग्स कहता है उन्हें रॉयल टूम में दफनाया गया, जबकि टू क्रॉनिकल्स कहता है उन्हें लेप्रेसी की वजह से एक ओपन फील्ड में रखा गया।
तो क्लिथर्ड इसे एक स्ट्रेट अप कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं।
हाँ, और कहते हैं कि इसीलिए हिस्ट्री की एक्यूरेसी पर इतना जोर मत दो। लेकिन वैन होय इस सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कह रहे हैं कि रुको, अगर ध्यान से देखो तो वहां कोई प्लॉट होल है ही नहीं।
तो वैन होय उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बस कैमरा का एंगल अलग होने की बात करते हैं।
बिल्कुल। वैन होय कहते हैं कि हो सकता है टू किंग्स एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हो और क्रॉनिकल्स हाइपर स्पेसिफिक हो, या फिर ये सेकेंडरी बरियल का केस हो सकता है जहां हड्डियों को बाद में मूव किया गया हो।
मेक सेंस। लेकिन लेक्चर नोट्स में सोलोमन और किंग हायरम के बीच का वो शहरों का लेन देन भी तो था, उसमें क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है?
है कि सोलोमन ने हायरम को 20 शहर दिए, जबकि टू क्रॉनिकल्स पढ़ने पर नैरेटिव उल्टा लगता है कि हायरम ने सोलोमन को शहर दिए थे।
ये तो एक मैसिव प्लॉट होल लगता है कैजुअल रीडर के लिए। क्या वर्नोई यहाँ बस टेक्स्ट को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
देखिए, वर्नोई इसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मैटर मानते हैं। वो कहते हैं कि एक किताब पहली ट्रांजैक्शन बता रही है जहां सोलोमन ने शहर दिए, और दूसरी किताब सालों बाद की बात कर रही है जब हायरम ने वो शहर वापस रिटर्न कर दिए।
हाँ, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकम्प्लीट डेटा है जिसे मिलाकर पढ़ना जरूरी है।
एग्जैक्टली। लेकिन एक और कॉन्ट्रडिक्शन है जो इन नोट्स का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है, डेविड और गुलायथ वाला मुद्दा।
वेट, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बचपन से तो यही सुना है कि यंग डेविड ने गुलायत को हराया था।
1 सैमुअल में वही लिखा है, पर 2 सैमुअल 21 में एक लाइन है जो कहती है कि एलहनान नाम के किसी शख्स ने गुलायत को मारा था।
क्यूकेटर्स के लिए ये क्लियर प्रूफ है कि ये सब मिथ है।
ओह, तो क्यूकेटर्स सोचते हैं कि किसी और के कारनामे डेविड के नाम पर लिख दिए गए।
हाँ, पर वैनोई यहाँ नेमिंग कन्वेंशन को पॉइंट आउट करते हैं। एंशियंट कल्चर्स में एक ही इंसान के कई नाम हो सकते थे। वैनोई सजेस्ट करते हैं कि एलहनान शायद डेविड का पर्सनल नाम हो और डेविड उनका थ्रोन नेम हो,
यानी राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपनाया गया नाम।
हाँ, तो दोनों एक ही व्यक्ति थे।
बिल्कुल, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में कॉपीज से गलती हुई हो और गुलायत के भाई का शब्द छूट गया हो, जिसका हिंट क्रॉनिकल्स में मिलता है।
इन सारी बातों से एक चीज तो क्लियर है कि क्यों किटर मीनिंग बचाने के लिए हिस्ट्री त्यागने को तैयार थे, पर वैनोए हिस्ट्री और मीनिंग दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं।
सही समझे आप, क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व यही है कि हम कॉन्ट्रडिक्शंस देखते ही टेक्स्ट को खारिज न करें, बल्कि अलग व्यू पॉइंट से उसकी गहराई को समझें।
और यह आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के तौर में सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी लेसन है। हमारे सामने जो नैरेटिव्स आते हैं, हमें सोचना चाहिए कि उनके पीछे का इंटेंशन क्या है।
बिल्कुल, क्या वो एब्सोल्यूट हिस्ट्री पेश कर रहे हैं या किसी और के बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। हमेशा सोर्सेस और उनके मोटिव्स को क्वेश्चन करना चाहिए।
वही तो। खैर, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार छोड़कर जाता हूं। सोचिए कि वैनोए ने गुलायत वाले पॉइंट का एक और दिलचस्प समाधान दिया था। क्या हो अगर गुलायत किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि किसी विशालकाय व्यक्ति को दिया जाने वाला एक जनरल टाइटल या उपाधि थी?
ओ वाओ,
जैसे फैरो या सीजर। एग्जैक्टली। अगर ये सच है तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमारे अपने इतिहास में ऐसे कितने तथ्य या नाम हैं जो दरअसल रूपक या टाइटल्स थे, जिन्हें वक्त के साथ लोगों ने लिटरल सच मान लिया। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।